La Prabhupada ki Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Giribar Dhari Gopijana Vallabha Girivar Dhari Gopijana Vallabha Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunathiravanachari Yamuna Ravana Chari Yamuna Ravana Chari Jayo Radha Madhava Thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततोदयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद अध्याय पहला श्लोक संख्या नंबर, इनका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार और श्लोक संख्या नंबर 23। कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिएगा। वासुदेव गृह साक्षात् वासुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुष परा भगवान पुरुष परा जनिष्यते तद प्रियार्थम जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवान्तुं सुरास्त्रिया संभवन्तु सुरास्त्रिया वासुदेव गृह साक्षा वासुदेव गृह साक्षा भगवान पुरुष परा भगवान पुरुष परा जनिष्यते तद प्रियार्थम जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरास्त्रिया संभवन्तु सुरास्त्रिया वासुदेव गृह साक्षा वासुदेव गृह साक्षा भगवान पुरुष परा भगवान पुरुष परा जनिष्यते तद प्रियार्थम जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरास्त्रिया संभवन्तु सुरास्त्रिया शब्दार्थ इस प्रकार है वसुदेव गृहे वसुदेव कृष्ण के पिता के घर में साकार रूप में भगवान पूर्ण शक्तिमान भगवान पुरुष आदि पुरुष परह दिव्य जनिष्यते उत्पन्न होगा तत्प्रियार्थम उसकी तुष्टि के लिए संभवन्तु जन्म लेना होगा सुरः स्त्रिया देवताओं की स्त्रियों को अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को देवताओं के सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। तात्पर्य भगवत गीता में चौथे अध्याय के नवे श्लोक में भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेतिस्सो अर्जुन। भौतिक शरीर त्यागने के बाद भगवत भक्त भगवान के पास वापस लौट आते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भक्त पहले उस ब्रह्मांड विशेष में भेजा जाता है जहां भगवान उस समय अपनी लीलाएं करते होते हैं। ब्रह्मांड असंख्य है और हर क्षण भगवान इनमें से किसी एक में प्रकट होते रहते हैं, इसलिए उनकी लीलाएं नित्य लीला कहलाती हैं। शिशुओं के रूप में देवकी के गर्भ में शिशुओं के रूप में देवकी के घर भगवान प्रकट निरंतर एक के बाद दूसरे ब्रह्मांड में होते रहते हैं, इसलिए भक्त को सर्वप्रथम वहां भेजा जाता है जहां उस समय भगवान अपनी लीलाओं में मस्त रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि यदि भक्त की भक्ति पूरी नहीं हो पाती तो भी या स्वर्ग का पतित होना है या पाती लिखा तो वो स्वर्ग का सुख भोगता है और अत्यंत पवित्र लोग निवास करते हैं और जब वह किसी सूची या श्रीमान अर्थात पवित्र ब्रह्मांड या धनी वैश्य के घर में जन्म लेता है सूचीनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। इस तरह शुद्ध भक्त यदि भक्ति को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो भी वह स्वर्ग में भेज दिया जाता है। जहां पुण्य आत्मा रहते हैं यदि उसकी भक्ति पूरी होती है तो वह ऐसा भक्त ऐसे स्थान को भेजा जाता है जहां भगवान की लीलाएं चली रहती है। यहां पर संभवन्तु सुरस्त्रिया कहा गया है। सुरस्त्रिया अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को वृंदावन में यदुवंशियों के यहाँ जन्म लेकर कृष्ण की लीलाओं को समृद्ध बनाने का आदेश दिया गया। यह सुरस्त्रिया कृष्ण के साथ रहने का और अधिक प्रशिक्षण पाने के बाद आदि लोक वृंदावन भेज दी जाएगी। इस जगत में कृष्ण की लीलाओं के समय स्त्रियों को विभिन्न परिवारों में विभिन्न प्रकारों से कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होना था, जिससे नित्य गोलोक वृंदावन भेजे जाने के पूर्व वे पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाए। वे द्वारकापुरी मथुरापुरी या वृंदावन में कृष्ण की संगति से निश्चय ही भगवत धाम वापस जाएगी। सुर स्त्रियों में अपने भक्ति ने यथा कृष्ण के उपेंद्र अवतार की माता ऐसी ही अनुरक्त स्त्रिया का इस प्रसंग में बतलाया गया था। सोम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनेश्वर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं तथापि स्वप्रकांतितं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभान सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय श्री श्री राधा के थारे भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो आज यहाँ पर इन श्लोकों में जहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं को आदेश दे रहे हैं कि भगवान स्वयं नित्य लीला करने के लिए प्रकट होंगे, तो यहाँ पर देवताओं के जितने भी पत्नियां हैं उन सबको आदेश दिया गया है कि आप सभी लोग भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए सभी लोग पृथ्वी पर जन्म लो, और ऐसे उन्हें आदेश दिए जिस आदेश के द्वारा भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होकर वहां से वो जब परिपक्व हो जाएगी तो सीधे भगवान के धाम पहुंच जाएगी। तो ऐसे बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने भक्ति में जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसे दूसरे भगवान की लीलाओं में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, हम जब जय ध्वनि भी कहते हैं तो नित्य लीला प्रवेशतुम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य नित्य लीला प्रवेशतुम, यानी कि जिन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। इसलिए भगवद गीता के भी 11वें अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक में 55वें श्लोक में जहां पर वर्णन करते हैं ज्ञातुम दृष्टुम च प्रवेशतुम परणतपा, ज्ञातुम दृष्टुम च प्रवेशतुम, तो ज्ञातुम यानी कि वो भक्त पहला सुनकर भगवान को समझता है, ज्ञातुम पहले वो समझता है जानकारी लेता है, जानकारी लेने के बाद ज्ञातुम के बाद दृष्टुम तब जाकर भगवान का साक्षात्कार होता है, और जब दृष्टुम होता है जब भगवान का साक्षात्कार होता है तब उसके बाद प्रवेशतुम तब वो प्रवेश करता है, फिर वो गोलोक जाएगा। गोलोक जाने का मार्ग इसके बाद, यानी कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होने के बाद। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। तो एक ही ब्रह्मांड में अगर खत्म हो गया तो दूसरे ब्रह्मांड में चलता रहता है। तो ऐसे ब्रह्मांडों में, हर ब्रह्मांडों में भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। उसमें भगवान जब लीला करते तो ऐसे भक्त लोगों को मौका मिलता है ताकि वो और परिपक्व हो जाए भगवान के धाम जाने के लिए। तो जब तक व्यक्ति पूरी तरह से योग्य नहीं होता तब तक भगवान उसे अपने धाम नहीं लेकर जाते या तब तक उसे लाते नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि कृष्णा इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो 100% जब तक प्यूरिफाई नहीं होगा तब तक वो अपने धाम में उसे नहीं लेके जाएंगे। जब ये प्रवचन देखे, जब प्रभुपाद जब उतर रहे थे तब उन्होंने देखा सबका चेहरा मायूस था, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई अगर 90% भी अगर भक्ति करता है तो भी वो भगवत धाम जा सकता है। तो थोड़ा बहुत ब्रह्मचारी थे, थोड़ा बहुत खुश हो गए, और भी ग्रस्त भक्त थे उन लोग भी दुखी थे। तो प्रभुपाद ने देखा उन लोग भी दुखी है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है 70%, 70% अगर कोई भक्त हो गया तो वो भी भगवत धाम जा सकता है। तो जितने गंभीर ग्रस्त थे सब खुश हो गए, नंबर लग सकता है। लेकिन उसमें और भी कुछ लोग दुखी थे, तो प्रभुपाद थोड़े से और गए, दरवाजे के इधर तक पहुंचे, दरवाजा जैसे ही खोले जाने के लिए तो प्रभुपाद पीछे मुड़कर कहने लगे कि कोई इतना भी नहीं कर सकता है तो कम से कम मेरे धोती को पकड़ के रखना, मेरे पास गोलोक का पीछे का दरवाजा का चाबी है, वहां से अंदर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद की असीम कृपा से हम सब जीवों को, जो जीव प्रभुपाद के आंदोलन में जो जुड़ गया है वो तो निश्चित है कि उसका रिजर्व टिकट हो चुका है गोलोक जाने का। तो वैसे प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो भगवान अब ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार मेरे नित्य लीला में भाग लेने के लिए सबको आदेश दे दो, तो कोई अगर भक्ति में अगर परिपक्व नहीं भी होता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति कोई करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, हर तरह से फायदा ही फायदा है। सुचिनाम श्रीमिताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए थे, अगर उसका भक्ति अधूरा हुआ तो सुचिनाम बड़े पंडित यानी कि बड़े वैष्णवों के घर पे उसका जन्म होगा, श्रीमताम या तो बड़े धनी के घर पे उसका जन्म होगा। तो ऐसे योग भ्रष्टो भी जाए थे, अगर उसका योग पूरी तरह नहीं हुआ भक्ति योग तो इस प्रकार उसको सुविधा दी जाएगी या मौका दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग की कोई इंजीनियर स्टूडेंट है और वो इंजीनियर के लिए जा रहा है, लेकिन उसे उस इंजीनियर कॉलेज में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ है कि जो कोई उस कॉलेज में फेल होगा तो उसे लंदन का टिकट मिलेगा और लंदन टूर करके आ सकता है। तो ऐसे अगर मौका दिया जाए, ऐसे अगर सुविधा दे दिया जाए तो सभी लोग वही कॉलेज में घुसेंगे। तो यहां पर भगवान अपने डिवोशनल भक्ति के जो भगवान का जो भक्ति का जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। भगवान कैसे, वो कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, बता रहे कि कोई अगर भक्ति थोड़ा सा भी कर लेता है नुकसान नहीं है, उसको आने वाले समय पर उसको पूरा मौका दिया जाता है। ऐसे यहां पर ये सोचकर हमें ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भक्त जो है वो सभी तरह से उनको लाभ ही लाभ है। जैसे रामायण में जहां पर वर्णन आता है जटायु का, जटायु जो थे भगवान की सेवा में लगे थे और हुआ क्या, उन्होंने अपनी सेवा पूरी तरह नहीं कर पाए। जब रावण आया था पुष्पक विमान लेकर सीता को अपहरण करने, जब उन्होंने सीता को जबरदस्ती विमान में बिठाकर जब लेकर जा रहे थे तब उसी समय यहां पर जटायु जो कि एक वृद्ध पक्षी, उनको जब खबर हुआ कि प्रभु राम की संपत्ति को चुरा रहा है रावण, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो रावण ने पहले जब जटायु को देखा तो उन्होंने सोचा ये तो बूढ़ा है, ये मुझे क्या कर लेगा, इसे तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगा। लेकिन जटायु क्योंकि प्रभु राम की सेवा में लगे थे इसलिए राम की सेवा करने वक्त उनको बुढ़ापा भी स्पर्श नहीं कर पाया और बड़े रफ्तार से सीधे विमान के ऊपर चढ़ गए, जिस गति से कि विमान भी उनका एकाएक धीमी पड़ गई। और रावण भी देखकर हैरान हो गया कि इसके पास इतनी शक्ति है। रावण ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि जटायु के पास इतनी शक्ति छुपी हुई है, क्योंकि जटायु जो थे वो राम की सेवा में पूरी तरह तलीन रहने के कारण उनके अंदर ऐसी सारी पीड़ाएं उसे सता नहीं रही थी। तो ये एक लक्षण है भक्ति का। और इस प्रकार जटायु ने अपने तरह सारी शक्ति लगा दी, मगर रावण जो था उन्होंने अपना पूरा बल लगाकर उनके पंख को काट दिया, और जबकि जटायु जमीन पर गिर पड़ा। और जब प्रभु रामचंद्र जी जब सीता के खोज में जब निकलते हैं, तब उस समय उन्होंने जटायु के अंग के टुकड़े को रास्ते में बिखरते हुए देखा, और तब जटायु के पास जब जाते तब जटायु की यह अवस्था देखकर प्रभु राम लक्ष्मण को कहते हैं, सीता हरणम जम दुखम न मैं सौम्य तथागता यथा विनाशो गृद्धस्य मत कृते च परण तपा। तो कहते हैं कि सीता हरणम च दुखम, सीता अगर हर लिया गया तो भी मुझे दुख नहीं हो रहा इतना जितना ये जटायु की अवस्था देखकर मुझे दुख हो रहा है। न मैं सौम्य तथागता, हे सुमित्रा के पुत्र, मुझे इस सीता के हरण के दुख से ज्यादा दुख क्या है, यथा विनाशो गृडस्य, ये जो पक्षी जो कि मेरी सेवा में लगा था और उनकी ये अवस्था है, ये देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और ऐसे सोचकर उन्होंने तुरंत ही उनको अपने गोद पे ले लिया। और क्या बताते हैं, मया त्वं सम उद्यतो गच्छकम इमम अनुतमा, उनको क्या गति प्राप्त हुआ, गच्छ लोकम इमम अनुतमा, गृधस्य राजा महासत्व संस्कृत मया कृत, भगवान स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। और इस कारण से उनको सदगति प्राप्त हुआ। और यहां पर जबकि जटायु पूरी तरह सेवा नहीं भी कर पाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं था, लाभ ही लाभ है। अगर हम दूसरे तरफ से देखा जाए कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपने जीवन में उन्होंने अंतिम समय पर जब विदुर के उपदेश को सुनकर वो जब पूरी तरह तैयार हो गए कि बस मैं अपने देह को त्यागी दूंगा, और ऐसे सोच निकल गए अपने जीवन को सफल करने के लिए, उन्होंने अष्टांग योग की विधि को अपनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और ऐसे कर कर उन्होंने अंततः गत्वा अपने ही शरीर से अग्नि प्रकट कर उस झोपड़ी के साथ वो जब जल गए, और उसमें गांधारी ने भी अपने आप को सती के रूप में स्वाहा कर दी। तो वैसे धृतराष्ट्र ने अंतिम समय पर जीवन को सफल किया, और विदुर को जब खबर मिला तो विदुर जी खुश भी हुए और दुखी भी हुए। तो वर्णन आता है कि विदुर जी खुश क्यों हुए, खुश इसलिए हुए क्योंकि विदुर जी ने सोचा कि जीवन भर विषयों में पड़ा हुआ था, कम से कम अंतिम समय पर तो मोक्ष के गति की ओर बढ़ा, और दुखी इसलिए हुए कि उन्हें मुक्ति मिला लेकिन भक्ति नहीं मिला। और धृतराष्ट्र ने जीवन भर इतना संघर्ष, इतना उन्होंने अपराध कर दिया था जिस कारण से उसे भक्ति प्राप्त, भक्ति से वंचित रह गया। तो धृतराष्ट्र इतनी तपस्या किए, जीवन को सफल किया, लेकिन वो मुक्ति जो कि बिना भक्ति वाला मुक्ति किस काम का। और वैसे यहां पर कोई अगर अपूर्ण भी भक्ति करता है तो भी वो अपूर्ण भक्त जो है वो मुक्त तथा कथित मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ऐसे भक्त उन्हें भगवान के दिए हुए आदेश का पालन करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने जीवन में सफल होता है। यहां इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं कि सभी को कह दो मेरी सेवा में तलीन हो जाए। और ब्रह्मा जी यहाँ पर उसी बात को लोगों को बता रहे हैं, सारे देवी देवताओं को। तो ये एक प्रकार का गुरु परंपरा प्रणाली हो गया कि किस प्रकार हमें जब आदेश मिलता है तो ऐसे नहीं कि कृष्ण आकर सीधा कहेंगे, आदेश मिलता है तो हमारे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है या गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि आदेश स्वयं भगवान का होता है। और यहां पर ब्रह्मा जी ने आदेश दिए सारे देवी देवताओं को कि भगवान की सेवा में ऐसे लगो कि भगवान को प्रसन्न कर दो। तो सेवा ऐसे होना चाहिए, तो कोई सेवा में नहीं लगता है तब उसके अंदर अहंकार का बीज अंकुर फूटता है। जैसे कि एक बार एक वरिष्ठ भक्त के मुख से मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में दो जन ऐसे व्यक्ति दिखते, दो महान देवता जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति या भगवान को समझने का, भगवान की महिमा को समझने के लिए भूल चुप कर दिया। एक थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे इंद्र। इन्होंने दोनों जन ने भूल चुक किया भगवान की महिमा को या भगवान की स्थिति को समझे, और इसलिए इन लोग अहंकार के शिकार हो गए। तो क्या कारण बताते, कारण यह है कि जब भगवान ने कहा कि मेरी सेवाओं में आ जाओ तो सब चले गए थे ये दो जन छोड़कर। एक था ब्रह्मा जी, दूसरे थे इंद्र। तो ब्रह्मा और इंद्र ने भगवान की सेवा में सहयोग नहीं दिया और इस कारण से ब्रह्म विमोहन लीला हुआ और साथ में गोवर्धन लीला हुआ, जो कि गोवर्धन को धारण किया मगर वो गोवर्धन नहीं था, वो इंद्र के अहंकार के गर्व को धारण किया था भगवान ने। तो ऐसे सारे देवी देवताओं को आदेश दे रहे भगवान ब्रह्मा जी कि ये भगवान की आज्ञा है कि तुम सभी लोग भगवान की सेवा में लगो। तो जब आदेश को कैसे पालना चाहिए इसके विषय में हमें समझना चाहिए कि जब हमसे, जब भगवान के द्वारा जब हमारे पास कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस आदेश को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। कि केवल सुनना, सुनना मतलब ये नहीं कि केवल सुन लिया, सुनने के साथ साथ में उसे करना भी पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि पानी लाओ तो वो बैठा है, पानी लाओ, सुना कि नहीं, सुना, पानी लाओ, नहीं सुना मैं, तो सुना तो क्या होना चाहिए, लेकर आना भी चाहिए। तो वैसे जब भगवान ने जब कुछ आदेश दिया है तो उसे करना भी चाहिए, और कैसे करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभुपाद जी के पास धनंजय प्रभु ने जब पुंडरीक प्रभु को लेकर आए थे और प्रभुपाद को कहने लगे, वृंदावन में जब लेकर आए तो प्रभुपाद को कहने लगे, प्रभुपाद ही इज अ वेरी स्पेशल डिवोटी, ये बड़ा ही विशेष भक्त है। तो प्रभुपाद कहने लगे, ऐसा क्या इसके अंदर विशेषता? तो इन्होंने कहा, ये हमारे इस्कॉन का पहला भक्त है जो पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक जानते हैं। तो प्रभुपाद कहने लगे, उसे जल्दी से सेवा में लगाओ, और देखना भी चाहता हूं कि कैसे वो श्लोकों को अपने जीवन में समझकर वो बाहर निकल रहा है। तो वो जो ज्ञान कब निकलता है, जब व्यक्ति सेवा में जब लगता है। तो ये जो भक्तों के, जो वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है वो वास्तविक में आदेश भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है, और उसे हम कैसे अपने जीवन में लगाए या अपने जीवन में करें जिससे भगवान पूरी तरह प्रसन्न हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम में जहां पर कर्दम मुनि की जा कथा आती है, तो उस समय कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने आकर आदेश दिया। तो ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है जिसमें कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के दिए हुए आदेश को उन्होंने ठीक ठीक पालन किया। तो बताते हैं कि जब गर्दम मुनि को जब आदेश दिया कि तुम अब संतान को उत्पन्न करो, पहले तपस्या करो, तपस्या के पश्चात देवहूति के द्वारा तुम्हें संतान प्राप्त होगा, और ऐसे उनको आदेश देकर चले गए। और गर्दम मुनि ने इतनी भयंकर तपस्या करकर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किए, भगवान प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उनको वर दिया और आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूँ। और इस प्रकार वही भगवान जब देवहूति के गर्भ को जब उन्होंने आश्रय ग्रहण किए, तब उस समय देवलोक सभी लोग ब्रह्मा जी के सहित सब आते हैं और देवहूति के गर्भ की स्तुति गाते हैं, और गाते हुए वो बताते गर्दम मुनि के विषय में कि गर्दम मुनि कितने महान थे। तो क्या बताते हैं कि इनको महान क्यों कहा गया है? तो कहते हैं ब्रह्मा उवाच त्वया अपिचितस्तथा कल्पित निर्व्यलिकता जन्मे संजर्क्य वाक्यम भवान मदान मानयन। तो कहते हैं तीन पॉइंट बताते हैं कि कैसे भगवान के दिए हुए आदेश को पाल कर इन्होंने कैसे भगवान को प्रसन्न किया। तो क्या बताते निर्व्यलिकिता, निर्व्यलिकिता यानी कि बिना कोई ठग करके, यानी कि बिना कोई द्वंद विचार रख के, निर्व्यलिकिता यानी कि द्वंद विचार, यानी कि कभी कभी व्यक्ति के अंदर डबल रोल का विचार होता है, तो वो जो बिना कोई डबल रोल खेलकर उन्होंने, यानी कि बिना कोई कपट विचार रखकर गर्दम मुनि ने अपना दिए हुए आदेश का पालन किया, पहला। फिर दूसरा बताते संजर के वाक्यम, ब्रह्मा जी कहते मैंने इनको जो भी कुछ कहा, इसे जो भी कुछ कहा इसे उन्होंने यथारूप सुना और उसको कर दिया। प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते वर्ड टू वर्ड, संजर्क को शब्दार्थ में लिखते वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द को गर्दम मुनि ने अपने जीवन में ब्रह्मा जी के दिए हुए आदेश का पालन किया। और फिर क्या बताते हैं भगवान मदान मायन, और कैसे साथ में मुझे आदर सम्मान देकर, ते दो पॉइंट यहां पर बताते हैं। और तीसरा पॉइंट बताते हैं एतावतित एषा सुश्रुषा कार्य पितैर पुत्रैकै बांधन इति अनुमन्यते गुरुवेन गुरो वचा। तो कहते एतावतित एव सुश्रुषा, तो यानी कि उन्होंने पहले तो ध्यानपूर्वक सुना मेरी बात को, कार्य पितृ पुत्रैकै, जिस कौन सा, जिस प्रकार एक पिता पुत्र को आदेश देते या गुरु शिष्य को आदेश देते हैं, उस आदेश को उन्होंने ठीक ठीक पालन किया। कैसे? बादम, बादम यानी कि बिना विचलित होकर, यानी कि बादम यानी कि उसका शब्दार्थ में बताते प्रभुपाद यस सर, तो यस सर यानी कि बिना कोई तर्क किए जो आप कह रहे हो सब मैं मानूंगा, इन पर कुछ नहीं, जो आपने कहा वो यथारूप में उन्होंने सुना। और गुरुवे न गुरुओ, उन्होंने इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए हुए आदेश का उन्होंने ठीक ठीक पालन किया। तो यहां पर तीन पॉइंट क्या क्या है, तो पहला निर्व्यलिकिता यानी कि विदाउट एनी डुप्लीसिटी, तो ये जो द्वंद्व जो विचार है, ये द्वंद्वपन का जो विचार उत्पन्न होता है अहंकार से, तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार अगर कोई बिना दिए हुए आदेश को ठीक ठीक पालन करता है तो वो अपने जो चार कमी जो होते हैं मनुष्य के अंदर, एक है चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की प्रवृत्ति, वो ठगने की प्रवृत्ति से वो व्यक्ति बच जाता है या छूट जाता है। कब छूटता है? जब वो दिए हुए आदेश का पालन ठीक करता है। श्लोक प्रभुपाद बताते कि इसे कैसे आचरण में लाए, तो बताते कि बाय सिंप्लिसिटी एंड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, केवल सरलता पूर्वक और बड़े आदर पूर्वक अगर कोई अपने जीवन में आदेश का पालन करता है तो इस समस्याओं को लांग सकता है। तो सरलता पूर्वक यानी कि क्या, जो दिया हुआ उसके अंदर अपने मन के कोई विचार नहीं रखना। जैसे हनुमान जी, जब उन्होंने जब देखा सरलता पूर्वक सेवा में हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, जब उन्होंने देखा कि सीता जी जब अपने माथे पर कुमकुम लगा रही हैं, तो हनुमान जी ने पूछा कि मैया आप ये क्यों लगा रहे हो, तो इन्होंने कहा प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए। तो हनुमान ने क्या किया, पूरे सर से लेकर पैर तक उन्होंने सिंदूर लगाकर प्रभु राम के सामने ताथई नाचने लग गया। राम ने कहा हनुमान ये क्या हो रहा है, बोला प्रभु रामचंद्र जी आपको प्रसन्न करने के लिए हैं। बोला मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं, ये हो क्या रहा है। बोले मैंने देखा कि सीता मैया अपने माथे में जब कुमकुम लगा रही है, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आपको प्रसन्न करने के लिए, तो केवल माथे में कुमकुम लगाने से आप प्रसन्न इतने होते हो, तो सर से पैर तक मैंने पूरा डब्बा ही खाली कर दिया तो आप और प्रसन्न हो जाओगे। तो ये हनुमान की सरलता थी। तो वैसे सिंप्लिसिटी, अगर वो सरलता की भावना अगर रहता है तो व्यक्ति बड़े आसानी से ये द्वंद्व विचार को या कपट भावनाओं को लांग सकता है। तो जब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व विचार होता है तो उसके अंदर संशय होते हैं, और संशय के कारण तीन कार्य या तीन विचार की संभावना होती है। एक तो जो गुरु ने आदेश दिया है उस आदेश का अर्थ कोई पूरा बदल देना, जो गुरु ने जैसे कहा है उस आदेश का अर्थ को अनर्थ कर देना, और दूसरा जो उन्होंने आदेश दिए तो उसमें से कहेंगे ये 50% सही है 50% गलत है, यानी कि जिसको कहते अर्ध कुकुट न्याय, और वो उस अर्ध कुकुट न्याय के रूप में जैसे कि जो मुर्गी जो होता है, मुर्गी का पीछे का हिस्सा जो है वो सोने का अंडा देता है, आगे के हिस्से बहुत खर्चे वाले इसलिए आगे का हिस्सा काट के फेंक दो, तो वो क्या हो गया, मुर्गी भी खत्म हो गया। तो वैसे चैतन्य चरितामृत में इसको अर्ध कुकुट न्याय कहा गया है। तो ऐसा तीसरा संभावना है कि जो गुरु कुछ आदेश देते हैं तो पूरा का पूरा आदेश को ही ठुकरा देना। ये तीन, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार जब होता है, जिस अहंकार से ये तीन संशय से ये तीन कार्य उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए पहला जब उसे आदेश सुनना है तो उसे निर्व्यलिकिता, उसे इससे रहित रहना चाहिए। अब दूसरा जो कि गौतम मुनि ने अपने जीवन में आदेश का पालन करते वक्त दूसरा क्या उन्होंने किया, संजर्खे यानी कि विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। जो गर्भ मुनि को जो आदेश दिया गया उसे जो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने वर्ड टू वर्ड उसको पालन किया, उसको अपने जीवन में धारण किया। अब उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाया, तो ऐसे अपने स्वयं के विचार को दिए हुए आदेश में जब डालते हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाता है या उसमें कुछ मिश्रण होता है और व्यक्ति परस्त हो जाता है या भगवान को प्रसन्न करने में वो चूक जाता है। लेकिन यहाँ पर गौतम मुनि ने कैसे किया, उसको यथारूप पालन किया। तो कोई अगर इसका अर्थ ये नहीं तो व्यक्ति को बिना बुद्धि से सोचकर कार्य करना है या सोचना कुछ नहीं है, बस जो कहा है उसे चुपचाप करो, उसे बुद्धिमानी पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। जैसे एक बार गुरु ने अपने तीन शिष्यों को आदेश दिया कि हमेशा सात्विक आहार खाना, ऐसे कहकर गुरु चले गए ध्यान में, और ये सारे तीनों शिष्य सोचने लगे सात्विक आहार खाने के लिए कहा है। एक हफ्ते के बाद जब गुरु वापस आए ध्यान से, तो जब वापस आए तो उन्होंने पूछा शिष्य, मैंने कहा था तुम लोग वैसे कर रहे हो कि नहीं? हाँ गुरु जी, आपने कहा सात्विक आहार खाना, हम जानते हैं कि सात्विक वस्तु क्या है, सात्विक सबसे बड़ी गाय सात्विक है, हम रोज उसे काट के खा रहे। तो गुरु ने कहा रहे मूर्ख, मैंने सात्विक आहार खाने को कहा, गाय को नहीं। और ऐसे कह के फिर चले गए ध्यान में। अब तीनों शिष्य सोचने लगे, अरे गाय से बड़ा सात्विक कौन हो सकता है? फिर गुरु के तरफ देखने लग गए। फिर गुरु के डब्बर लग गया। गुरु से सात्विक कौन हो सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि उसे बिना मूर्खता पूर्वक कार्य करना है, नहीं विचार पूर्वक करना चाहिए, या विचार करके उसका आदेश का पालन करना चाहिए। जब सरस्वती ठाकुर जब मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकले, उस समय वो गार्डन में जब चल रहे थे, उसी समय उनका एक शिष्य जो कि अनपढ़ है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं जानता वगैरह, वो पानी डाल रहा था सारे पौधों को। तब उस समय प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर आकर उनको पूछे, प्रश्न पूछे कि तुम सब कुछ जानते हो वैष्णव सिद्धांत वगैरह? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा जीव कौन है, तो भगवान कौन है, दोनों में अंतर है क्या, ये जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, सब जो भी प्रश्न किया उन्होंने यथारूप उत्तर दिया, सब स्पष्ट रूप में। सरस्वती ठाकुर पूछते लगे, मगर तुम तो अनपढ़ हो, तुमने ये सब कहां पढ़ा? तो इन्होंने कहा आपके लेक्चर में मैं सब सुना। तो सरस्वती ठाकुर कहने लगे, ये है पराम सिद्धि, और वो क्या है, इन्होंने केवल सेवा करते हुए इनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो वैसे जो जब दिए हुए आदेश का जब व्यक्ति पालन करता है, तो भले ही वो उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है कि कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है तो ही वो भगवान के दिए हुए आदेश के पालन में सक्षम होगा या वो सफलता प्राप्त करेगा, नहीं। केवल जो दिए हुए आदेश का ठीक ठीक पालन करता है वो व्यक्ति बराबर अपने दिए हुए आदेश के रूप में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है बादम। बादम यानि कि जो भी कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था आदेश, उन्होंने कोई उसमें विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना कोई झिझकपन से उन्होंने सब कुछ सुन लिया। तो यह है तीसरा पॉइंट, जो कि हमारे हृदय का, जो मन से, जब मन के चारों तरफ जब माहौल जब ठीक नहीं रहता है, तो जब गुरु के द्वारा जब आदेश दिया जाता है तो व्यक्ति डगमगाने लगता है, या कभी कभी सोचता है कि मैं हाँ बोलूं ना बोलूं क्या बोलूं, तो उसमें वो व्यक्ति विचलित होता है। तो ये विचलित होने का जो संभावना है मन से उत्पन्न होता है। अब यहां पर गर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो दिए हुए आदेश को उन्होंने बिना विचलित हुए उन्होंने यथारूप में पालन किया। तो कभी कभी गुरु के द्वारा जब आदेश प्राप्त होता है तो कभी कभी माहौल भी जो होता है वो हमारे दिए हुए आदेश के साथ तालमेल नहीं खाता है, तो ऐसे लगता है कि ये सब छोड़ के चला जाए या कहीं मुझे गलत जगह पे रख दिया है, तो वो गुरु के दिए हुए आदेश में वो विचलित हो जाता है। लेकिन जो भक्त जो होते हैं उन्हें आदेश का पालन कैसे करना चाहिए, तो यहां पर बताया गया। और वो क्या है, बादम। बादम यानी कि यस, जो आप कह रहे हो सब मानूंगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके विषय में बताते हैं कि कोई भी हमारा भौतिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहिए, भौतिक स्थिति से परे भक्ति। तो भौतिक स्थिति के अनुसार नहीं देखना चाहिए, केवल अनुकूल्य से संकल्प, जो कुछ कृष्ण से अनुकूल है उसे ग्रहण करना चाहिए। बाकी बाहरी जो एक्सटर्नल जो वस्तु है वो हमारे भक्ति में रुकावट नहीं देती, या उससे व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाहरी जो संकट है कुछ ही क्षण के लिए होता है और तुरंत ही चला जाता है। तो उदाहरण देते हैं दो जन का, एक है रूप गोस्वामी का और दूसरा है रामानंद राय का। रूप गोस्वामी जो थे अपने जीवन में त्याग के प्रिंसिपल से जीते थे, वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और त्याग कर वो अपने जीवन को बिता रहे थे। ये रूप गोस्वामी का जीवन शैली दिखाई पड़ता। पहले तो बहुत धनान्य संपत्ति में वो डूबे थे, एकाएक जैसी चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो उन्होंने त्याग के रूप में महाप्रभु के आंदोलन में सहयोग दिया। अब रामानंद राय जो थे वो सरकार केंद्र में वो काम करते थे, और रामानंद राय जो कि एक भोग, बाहरी दृष्टिकोण से ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि भोग वातावरण में डूबे हुए हैं, लेकिन उसमें भी रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को सहयोग किया उनकी सेवा में। तो यहां पर रामानंद राय जो कि भोग वातावरण में रहकर चैतन्य महाप्रभु को सेवा किया, रूप गोस्वामी त्याग वातावरण में सेवा किया, और दोनों का सेवा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है। तब सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं, ये कहते हुए कहते हैं कि प्रोषित प्रातिक का, प्रोषित भातृ का, प्रोषित भातृ का यानी कि जब पति जब घर पर रहता है तो पत्नी अपने आप को सज ढज कर रहती है, और जैसे ही पति जब बाहर चला जाता है कई लंबे टूर में चला जाता है तो जितना भी श्रृंगार इत्यादि जो सजना ढजना जो है वो सब छोड़ देती है। तो यहाँ पर पत्नी का दो अवस्था दिखाई पड़ता है, एक तो सजना ढजना और दूसरा श्रृंगार सब त्याग देना, लेकिन दोनों अवस्था में उनका चित्त पति के पास रहता है। ऐसे सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जो बाहरी जो वस्तु है वो बाहरी वस्तु उसको विचलित नहीं कर सकता। जैसे तमाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद से कहने लगे कि प्रभुपाद ये मुंबई का जो टेंपल है श्री श्री राधा राज बिहारी, इसके लेन देन में मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, तो प्रभुपाद कहने लगे जब तुम क्या सोचते हो कि मैं विचलित नहीं हो रहा हूं, मैं भी विचलित हो रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें विचलित होने का पन जब लगता है तो जोर से हरे कृष्णा बोलो और जोर से हरे कृष्णा बोल के जप करो, जिससे ये सारी संकटें चली जाएगी। तो भले ही माहौल उसके साथ अनुकूल नहीं है, अगर वो विचलित हो भी रहा है, वो मन से डगमगा भी रहा है, लेकिन दिए हुए आदेश को उसे पालना चाहिए। और जब ये तीन जो कि अहंकार बुद्धि और मन, ये तीनों को अगर एकाग्र कर वो जब दिए हुए आदेश का पालन करता है तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर वही बात को यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बता रहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए सभी लोग मेरी लीलाओं में भाग लीजिए। तो अब ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त हुआ है देवी देवताओं को, तो वो आदेश को कैसे पालना है, तो ये तीन पॉइंट से व्यक्ति अपने जीवन में उसे समझ सकते हैं। तो अब जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवा करते हुए या आदेश पालते हुए भी वो कभी कभी सक्षम नहीं होता है या अपराध पूर्वक चला जाता है। तो उदाहरण आता है सौवर्य मुनि जो थे ये बड़े अच्छी तरह तपस्वी थे। अब उसमें सौबर मुनि की अगर जीवन चरित्र अगर देखा जाए, उस समय जब कालिया जो था वो गरुड़ के दिए हुए जो भी कुछ भोजन था उसको स्वयं खा लेता था, और यहाँ पर जैसे बताया गया है तत्रा की एकदा जल चरम गरुड़ बक्षम इप्सिताम, जो भी कुछ गरुड़ का जो भोजन था वो कालिया उसे खा जाता था। तो गरुड़ को बड़ा बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने उनको सचेत किया और उनके डर से वहां से भागकर कालिया ने शरण लिया यमुना नदी का वृंदावन में, क्योंकि उसे पता था कि सौवर्य मुनि के द्वारा श्राप लगा है। और सौवर्य मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया था कि तुम्हें यहां नहीं आना है, तो क्यों? क्योंकि मीन सु दुखितान दृष्टवा, जब उन्होंने देखा मच्छी लोग बड़े दुखी है क्योंकि यहां पर गरुड़ आकर मच्छी खा रहा है, और दीन मीन पतु हते, तो मच्छियों का जो राजा जो था उन्होंने सौवर्य मुनि का शरण लिया और कहा कि हमारी रक्षा करो। तो जब इन्होंने शरण लिया तो सौवर्य मुनि बड़े दयालु हो गए, कृपया सौवर्य पार्थ, उनके हृदय में दया भावना हुआ, कृपया सौभरी रहा, तो अपनी दया प्रकट करते हुए उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया। तो यह अपराध हुआ पहला, जो कि गरुड़ जो था उनसे वरिष्ठ था और वरिष्ठ के द्वारा सेवा सुनना चाहिए, ना ही उसे आदेश देना चाहिए। तो पहला उन्होंने अपराध क्या किया, उनको सीधा आदेश दिया, कमांड किया कि तुम्हें यहां नहीं आना है, और दूसरा उन्होंने उनको श्राप दिया और बोला कि तुम यहां पर आओगे तो तुम्हारी अवस्था नष्ट हो जाएगी, तुम जलकर राख हो जाओगे। और यहां पर सौवर्य मुनि ने गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया। तो अपराध के ये पांच लक्षण होते सेवाओं में, कैसे? पहला उन्होंने होता है संगति से। तो जब व्यक्ति का दुष्ट संगति होता है तब वहां से उनका उसके प्रति दूसरा स्टेप होता है, उसके प्रति समर्पण या आकर्षण, और जब आकर्षण उत्पन्न होता है उसके प्रति तब तीसरा होता है आसक्ति, और जब आसक्ति उत्पन्न होता है तब उनके लिए उनको प्रसन्न करने के लिए वो सारे सही गलत की जो दृष्टि को भूल जाता है, और सही गलत की दृष्टि को जब वो भूल जाता है तब पांचवा होता है वो अपराध पूर्वक कदम को बढ़ा देता है। तो ऐसे यहां पर सौवर्य मुनि जो थे वो मच्छियों के प्रति आसक्त हो गए और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सही गलत का भेद न करते हुए गरुड़ को श्राप दे दिया, जिससे सौवर्य मुनि का क्या हुआ, वही मच्छी के कारण सौवर्य मुनि अपनी तपस्या के मार्ग से गिर पड़े, और फिर वही दृष्टवा मैथुन धर्मिना मीन धर्मिना, और जैसे उन्होंने दो मच्छियों को संग आते हुए देखा तो इनके हृदय में भी इच्छा हो गई कि मैं भी विवाह करूं, और इस प्रकार वो भी अपने तपस्या से च्युत हो गए। और यहां पर उन्होंने गरुड़ को रोका, उसका पतन हुआ, उसका ही नहीं साथ में जितने मच्छी थे सारे के सारे तालाब में जितने मच्छी थे सब मर गए, क्योंकि अभी कालिया एंट्री मारा, और जैसे ही कालिया उसमें प्रवेश किया तो पूरा अपने जहर से पूरे मच्छियों को मार दिया। पहले तो गरुड़ एक दो मच्छी को ही खाता था, तो वो जो उनका जो सेवा वो क्या हुआ, समाज में उत्पात खड़ा किया। तो ऐसे जो अपराध पूर्वक जब सेवा होता है तो व्यक्ति ना ही भगवान, वो उससे क्या होता है, केवल उत्पात और खड़ा होता है। इसलिए उसे जो दिए हुए जो आदेश है उस आदेश का उन्हें ठीक ठीक पालन करना चाहिए, तो इस प्रकार वो भगवान को प्रसन्न कर सकते। इस तरह ब्रह्मा जी कह रहे हैं सारे देवताओं को कि सभी लोग अवतार, सभी लोग भगवान के लीलाओं में भाग लेकर भगवान की सेवा में लगो, इस तरह कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की